tidak dinamai di kita. Ini untuk usne ekati tidak. Milan ki kitni utkantha. Are utni na ho utne hum logo se nahi hoga. Kintu hona to kuch to hua hona chahiye. Kuch bhi to hona chahiye. Hum logo ko iske liye nahi. Ye kaise hoga? Hari katha sunne se hoga. जितने उनके विषय में हमारी ममत्व हमारा ममत्व होगा कृष्ण के साथ ममत्व होगा कृष्ण के ममत्व होने के पहले गुरु और वैष्णव में ममत्व होगा जैसे अपने लड़के के प्रति लड़की के प्रति स्त्री के प्रति ममता होती है ऐसे नहीं मालूम होगी 10 वर्ष तक 20 वर्ष तक अपने बच्चे के साथ में कोई रहे मालूम नहीं होगा जी ममता है किंतु उसका अपहरण हो जाए एक दिन के लिए एक घंटे के लिए तो देखो तो वो ममता कैसे रंग लाएगी हम लोग की मठ में इतने आदमी रहते हैं मालूम नहीं होता कि ममत्व रहती है कैसे मालूम हो यदि वो किसी प्रकार से दुखी होकर के और थोड़ा सा न खाए या थोड़ा सा मठ से बाहर चला जाए तो देखो तो ये कैसी बात है इसलिए हरि कथा में ममत्व लाती है हरि कथा जितना ही हरि कथा जो श्रवण करेगा जितना ही भगवान का नाम करेगा जितना ही उनका मनन चिंतन करेगा उतना ही ये ममता आएगी यही ममता पहले रुचि कहलाती है फिर कहलाती है आसक्ति और यही ममता जब पूर्ण रूप में हो जाती है तो भाव कहलाता है यही भाव जब परिपक्व होकर के अपनी पूर्ण दशा में उपस्थित हो जाएगा तो यही प्रेम और उत्तर उत्तर ही ममत्व बढ़ता जाएगा वही स्नेह मान प्रणय राग अनुराग महाभाव इत्यादि तक बढ़ता ममता ही भक्ति है असल ममता अतिशय अंकिता ही प्रेम है और जब थोड़े से रूप में रहेगा तो उसको भाव इसलिए ये इन हरि कथाओं के माध्यम से ही उनके प्रति ममता बढ़ेगी जो जितना ही हरि कथा का अनुशीलन करेगा जितना ही हरि नाम शुद्ध रूप में करने की चेष्टा करेगा कृष्ण के प्रति ममत्व आएगा जरूर आएगा इसलिए इन हरि कथाओं को सुनना चाहिए हम लोग उसी दृष्टि से देखेंगे जो हमारा उसके प्रति लोभ हो किसके प्रति लोभ हो यह कौन कह रहा है पेड़ भी गोपियां गोपियों का समूह कह रहा है एक एक घर में गोपियां बैठी हैं उसमें 10 गोपी 20 गोपी 50 गोपी अपने अपने भाव वाली स्वपक्ष वाली में वो कैसे हैं एक साथ स्वपक्ष में ललता के गण वाली जो है वो एक साथ बैठी विशाखा के भाव वाली जो है वो अलग से बैठी चित्रा वाली अलग बैठे अष्ट सखियों के जितने भी हैं उनका अपना अपना एक महत्व है एक एक स्वभाव है कृष्ण के प्रति श्रीमती राधा के प्रति अपनी एक निष्ठा है इसलिए ये सब विपक्ष वाली एक साथ है सुहित वाली एक साथ और तटस्थ वाली एक साथ है ऐसे कितने हजार उनके समूह गण इत्यादि हैं यूथ अपने अपने घरों में एक एक जगह एकत्र होकर के कब कह रहे हैं कृष्ण गोचारण करने के लिए चले गए जब वो गोचारण करने के लिए चले गए तो ये तो जहां तक कृष्ण दिखाई पड़े तब तक तो वहां तक गए जब आंसू से ओझल हो गए कृष्ण तो वो अपने अपने घर को लौटाई गई लौटी नहीं लौटाई गई किसके द्वारा लौटाएंगे जिन सखियों का भी उतना गाढ़ा प्रेम नहीं है या उनकी सास हैं माताएं हैं बंधु हैं भाई हैं उन लोगों ने उसको पकड़ कर घर बुलाया अब यहां पर बैठ करके देख रही हैं भाव नेत्र से भाव नेत्र में यहां पर बैठी हैं भाव नेत्र से देख रही हैं सखियां भी बैठी हैं वो भी भाव नेत्र से देख रही हैं और देख करके तभी बड़े तो धीरे धीरे क्या है वो गोपियां कृष्ण के अलक्षित होकर के कृष्ण जब चले गए, वो गोपियां देखा जब कृष्ण को उचाड़ एक वन से दूसरे वन में जा रहे हैं, और देखा क्या, ये श्लोक जो है बराहपुरम किसका है, सुखदेव गोस्वामी। उन्होंने कैसे कहा, गोपियों ने इसको उच्चारण किया, भाव से जब देखा कृष्ण को इस रूप में, तो सुखदेव गोस्वामी के यहां परछाई पड़ी उसकी, और तब उन्होंने तो वो कृष्ण कैसे गोचारण कर रहे हैं, कैसे बंसी वादन कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, और सारी प्रकृति उनके प्रति क्या भाव से कैसे कर रही है, उन्होंने सारी सब चीज को प्रत्यक्ष मूर्तिमान के रूप में देखा, अपने से सबको श्रेष्ठ देखा। देखा क्या, पहला श्लोक को उन्होंने बतलाया, उनकी आंखें ही यथार्थ आंखें हैं, आंखें राना उन्हीं का सार्थक है जो कृष्ण का रूप देखा, रूप ही नहीं, एक पन से दूसरी पन में गायों के साथ सखाओं के साथ में जाते हुए देखा। बलदेव जी आगे आगे बंसी बजा रहे हैं, पीछे पीछे वेणु बजा रहे हैं, कृष्ण देखा, पीछे जो कृष्ण है वेणु बजा रहे हैं, वो सदैव नेत्रों से बंसी बजाते हुए किसी को देख करके बंसी बजा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उनका यह मुस्कान भरी जो वेणु है बजाना, इसको जिसने देखा उसकी आंखें सार्थक, अन्यथा किसी की सार्थक नहीं, उसमें भी उसकी सार्थक है जो बलदेव जी को आगे जाते हुए देखा चले गए, और पीछे से जो कृष्ण है श्रीमती राधिका के साथ में बंसी बजाते हुए देखा, और दोनों ने बड़े करुण नेत्र से एक दूसरे के तरफ में देखा, मुस्कुराते हुए देखा, उनको जो यह दृश्य देखा, उन्हीं की आंखें एकमात्र सफल है दूसरे किसी की नहीं। च्युत प्रवाह पर मानानुमृत परिधान विचित्र वेश मध्य तीर जतु अलग पशुपाल गोष्ठन रंगे यथा नटवर पच गायमान। ओ कृष्ण की मैं क्या अद्भुत सौंदर्य माधुर्य वर्णन करूं, बड़ी भारी सभा बीती हुई है, कहां पर बीती हुई है, गोपेश्वर महादेव के विराट सामने विराट बन गए, बहुत लंबा चौड़ा समतल जमुना का किनारा, हजारों सब ऋषि महंत सब रसिक वैष्णव लोग जुटे हुए, और उसमें दो सुंदर सुंदर नट वेश में बंसी लिए हुए मयूर मुकुट बांधे और बीच में उपस्थित, और ऐसा सुंदर नृत्य करने लगे देख करके सभी मोहित हुए, रूप गोस्वामी ने वर्णन। हमने कभी रासोस खूब कम ही देखा, एक दो बार कभी, क्योंकि एक बार थोड़ा सा नट के रूप में देखा था कृष्ण बना हुआ अद्भुत, और आज क्या जी बना, ऐसा सब सुंदर नृत्य किया जो देश विदेश के लोग थे बन महाराज जी के यूनिवर्सिटी में, उनका नृत्य देख करके सौंदर्य देख करके सभी मुग्ध हो गए, बोली कैसे एकदम क्वेल के गले को भी मात करने वाली, कुहू कुहू को भी मात करने वाली, तब कृष्ण की क्या दशा होगी, और भाव नेत्र से ये देख, रंगभूमि में दो नट, एक श्याम एक गौ, एक बलदेव जी और एक कृष्ण बंसी बजाते हुए देख करके सभा एकदम चकित, केश लुटा आरंभ च्युत प्रवाह, च्युत माने क्या, आम्र प्रवाह, उसके लाल लाल जो अभी पत्ते अभी जो निकलते हैं कोमल कोमल, उनको यहां पर रख लिया है कृष्ण बलदेव ने, या उसी के पत्ते को यहां पर गोलाकार बना करके यहां पर पहन दिया है, कनेर का फूल लगा दिया, गले में वैजयंती माला खुल गई, सुत प्रभाव परहस्त पला दिया, सुंदर सुंदर मयूर के पंखों को लेकर के ऐसे ही अपने केशों में लगा दिया है, बना बना में मुकुट कुकुट नहीं, ऐसे ही दो चार गुच्छ लेकर के यहां पर लेकर के लगा दिया। परहस्त मालान रिक्त परिधान विचित्र वेश, उनका परिधान कैसा है, पहने हुए कैसे वस्त्र, अद्भुत। आगे चल करके बतलाएंगे गाय को नोने के लिए पैर बांधने के लिए इसको तो यहां पर बांध रखा, और पाश माने गायों को बांधने के लिए जो रस्सी होती है उसको यहां पर डाल दिया, मस्त खो करके दोनों, जैसे गायों को दोहन करने के लिए जाते हैं एक वन से दूसरे वन में जा रहे हैं, एकदम गोपाल का वेश सखाओं का वेश बना। जब जैसा वेश वो करते हैं यदि नंगे रहे तो और भी सुंदर, मान लो कि जैसे किसी गोपी ने कोई एक काली कोई चीज लगा दी मल दी मुख में, और भी परम सुंदर, एक आदमी खूब सुंदर हो, एक लड़की या लड़का, और एक मशा हो जाए, मशा कहते हैं काला सा, वो तो खराब नहीं दिखता और भी अधिक सुंदर दिखता है। ऐसे ही कृष्ण के अंगों में जो कुछ लगा दिया, जब धूल लग जाती है रास्ते की गौओं के खून से उठी हुई, वो कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य को और न जाने कितना बढ़ा। मालानुप्रिक परिधान विचित्र वेश मध्य वीरजतु अलम पशुपाल पुष्चांग रंगे जथा नरवरो चुगाए। ऐसे सुंदर वो गान करते हैं, कैसे बंसी के द्वारा गान कर रहे हैं, अत्यंत अद्भुत सुंदर दिख पाए। इतने में गोपियां देखा जे उनके अधरों पर मुरली बजा रहे विराजमान, बस उनको हो गया मान और चीर करके अब उलाना देते गोप्य कुशल किमाचर दैन कुशल वेणु दामोदर धरा अभी गोपिका नुमते स्वयं अवशिष्ट रसम दंडो हिस्वतचो अश्रु मुमुक्षु चतुर्भो यथा ज्ञा। कितनी ढीठ कितना ढीठ है ये वेणु, पुरुष होकर के भी हम लोगों के अधिकार में रहने वाली चीज पर जबरदस्ती हम लोगों को दिखलाते हुए अंगूठा, और कृष्ण का यह मुखारविंद का अधर्म का यह रश्मि का है, हम लोगों के अतिरिक्त किसी का इस पर अधिकार नहीं है, और हम लोगों को दिखलाते हुए हम लोगों को लूट फेंक करके और हमारे सामने हमारी संपत्ति को लूट रहा है, हम चूं तक नहीं कर सकते, अपनी विवशता यहां पर दिखला। बेड़ में एक काटती सूखी हुई नाली और उस पर इतना चीज, यही महाभाव का लक्षण। अप्राणी में भी प्राणी में भी कृष्ण सेवा की कुछ नहीं, और तभी देखती है महाभाव की अवस्था में जो हमसे भी श्रेष्ठ है और कृष्ण की सेवा करते हैं। वैष्णव लोग गुरु के कोई गुरु सेवक अपने गुरु भाइयों को किस लिए सम्मान देता है, किस लिए आदर करता है, जितना ही उच्च सेवक होगा उतना ही देखेगा कि हमसे अधिक गुरु जी की सेवा करता है। यहीं से अभ्यास पहले हो, गुरु सेवक है मान्य आपनार, क्यों क्यों मान्य हो, इसीलिए वो देखता है ऐसा, मैं सेवा जो नहीं कर सकता हूं उससे अधिक सेवा करता है, सेवक का यही हृदय में भाव। जिसको ऐसा होगा वो सब सेवकों को मान्य देगा, ईर्ष्या की अन्यथा तो ईर्ष्या होना बात है, इसलिए वहां पर वो गोपियां देखती है पेणु जो मैं उनकी सेवा नहीं कर सकती, और हमारे धन को हमारे सामने ही जिस पर मेरा सत्व है और उसको अपहरण करता है, पेणु पुरुष जाति होकर के भी स्त्रियों के जो की संपत्ति है उस पर अधिकार तनी के भी नहीं रखता, कुछ भी और चीज ने पूरा का पूरा पान हम लोगों के लिए थोड़ा सा भी रख देता तो नहीं रखता। देखो तो ये हम चिढ़े नहीं, क्यों नहीं चिढ़े, इसके बाप दादे हैं ये भी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और प्रेम से आंसू बहा रहा है उनके लिए। हमारे कुल में एक ऐसा हुआ जब कृष्ण के अदम पर बैठकर तो उसका पान कर रहा है और कृष्ण का कैसा प्यारा है, जरा वो बेणी तो दे दो ना, बांसुरी हमारी दे दो। कौन कह रहा है? कृष्ण हाथ जोड़ करके गोपी से, वही बंसी जो हमारी प्राण से भी प्यारी है, जिसको एक समय एक क्षण के लिए भी सोते अवस्था में नहीं छोड़ता और उसको उन लोगों ने चोरी करके दे दी, प्राण ले लिया आपका तो कोई बात नहीं होती, किंतु बंसी दे दी। पहिया पड़ो, मैं उनकी पहिया पड़ो, भाई बंसी तो हमारी दे दो, प्राण तुम इसके बदले ले, किंतु बंसी दे दो। तो ये बंसी जिस कुल में पैदा हुई, कौन कुल में पैदा हुई? बांस। किंतु बांस के बड़े भैया हैं, छोटे भैया हैं, वो कौन है? बरगद के पेड़ हैं, आम के पेड़ हैं, ये बड़े भैया हैं। और छोटे भैया सब पांच बहुत भाई हैं। वो नंद बाबा के तो दो बड़े और दो छोटे और बीच में वो पांच भैया, और इनके कितने हैं? बरगद आम इत्यादि लाखों पेड़ हैं। और छोटे में कौन है? बांसों से भी छोटे जो पतले ये इत्यादि हैं, लताएं जी। आज उन सबको गुमान है कि हमारे वंश में एक ऐसा हुआ जो कृष्ण का इतना प्यारा हो गया जो गोपियों की संपत्ति को भी अपहरण कर रहा है और सब समय उनके मुखार बिंदु पर विराजमान है। कृष्ण उसको छोड़ते नहीं है स्वप्न में, इसलिए आज अपने वंश में बांस को देख करके तो कोई बात ही नहीं, उनके जो बड़े भैया छोटे भैया हैं पेड़ सब बरगद के इत्यादि के नीम के और सब चीजों के, ये प्रेम से आंसू बहा रहे हैं अर्थात उनसे रस की धारा निकल रही है। बड़े प्रफुल्ल हैं, कदम्ब बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, क्यों? आज वंश हमारे वंश में, तो वो क्या कर रहे हैं? एकदम पुलक से भर गया, आम उनके पेड़ों में मंजरी लग गई। एक पेड़ होता है हरसिंगा, देखा है हरसिंगा? सब समय श्रृंगार से भरा रहता है और कृष्ण के लिए अपने सारे फूलों को एक साथ ही जमीन पर बरसा देता है। जब ये वो हरसिंगार से पूरे फूल गिर जाए तो अब समझो कि अब क्या हो गया, ये ब्राह्मण मूर्त हो गया, निशांत तो हो गया, अब रात अंत हो गया, ये समझ। जिस समय रात अब बीतती जाएगी, तारे और चंद्र धीरे धीरे ओझल होते चले जाएंगे, जब तारे ओझल होने लगेंगे तो ये भी अपना फूल सब छोड़ देता है, अब रात समाप्त होने वाली। ऐसे ऐसे सब पेड़ बड़े प्रसन्न हो गए, लताओं में फूल भर गए, वो भी प्रसन्न हो गई। आज हमारे कुल में एक ऐसा पुत्र हुआ यथार्या, जैसे आर्य लोग उनके पूर्वज लोग, यदि कृष्ण अपने कुल में कोई एक भी भक्त हो गया शुद्ध तो उसके पूर्वज लोग पीछे से आने वाले लोग सभी लोग बड़े प्रसन्न। हमारे कुल में एक ऐसा हुआ, प्रहलाद महाराज के कुल में आज तक भी लोग कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं कि मनुष्य तो थे ना पुरुष, इसलिए हम कहते हैं मनुष्य लोक में हमारे कुल में प्रहलाद महाराज जैसा। नर लीला में या जैसे वो नर नर करेवर में कृष्ण पैदा हुए, और किसी कुल में तो हुए नहीं, तो वो हमारे कुल में। हम लोग का गोत्र क्या है? जो कृष्ण का भजन करता है वो सब अच्युत गोत्र है, विशेष करके हमारे गौड़ीय वैष्णव, स्त्री हो पुरुष हो सबका गोत्र अच्युत। इसी तरह से समझो आज वो बड़ी प्रसन्न है, सभी लोग बड़े प्रसन्न है, आज हमारे कुल में ऐसा केवल एक प्रसन्न नहीं है ये गुरु, किंतु दूसरा यदि होगा ना तो हम लोग तटस्थ हैं ना, हम लोग कहें गोपियों के समान और किसी को आनंद नहीं हुआ। तो करें इन गोपियों ने कौन सी ऐसी तपस्या की? कुशलस्म बेणु किम्माचरत अयम कुशलस्म, वो ये जो कुशल मानी जो धन्य है बेणु, इसने कौन सी पूर्व जन्म में इसने तपस्या की? सखी हम लोग जानती हैं
तो आज ही से वो तपस्या हम आरंभ कर लें। तो हम लोगों की यही सोचे विचारे कि हम आज से ही वो चीज को जानें कि कैसे कृष्ण पाए जाते हैं और ये भाव कैसे आते हैं, ये गोपियों का भाव कैसे आते हैं, उसके प्रति लोभ हो और उसको जानने की चेष्टा से कहां मिलेगा ये सब चीज मिलेगा कहां से? जो इस भाव को प्राप्त करता है इसकी कुंजी कहां है? भक्ति रसामृत सिंधु इत्यादि ग्रंथों में शामिल, किंतु चाबी किसके पास में है? रसिक और भावकों के पास में, उनके पास में जाएंगे, निहोर होकर प्रार्थना करेंगे, देखेंगे बार बार उनसे ये कैसे मिलता है, इसका इस प्रकार से साधन। आज गोपियां उस साधन को खोज रही है, कैसे हुआ पेड़, और समझते हैं कि वो जो पेड़ हुआ होगा वो कैसे गोपियों का चरित्र में लोग हो करके तब किसी प्रकार से वो बांस कुल में जन्म लेकर के तो आज पेड़ हुआ। गोपियों की कृपा से ही संभव। आज गोपियां ललक रही हैं कि मैं बेणू होकर के जन्म लेती, ऐसी तपस्या करती कि बेणू कुल में जन्म होता, बेणू बन करके कृष्ण के मुखार में, इसलिए आज उनके प्रति ईर्ष्या हो गई है। क्या कर पुनः पूजा दो, हाँ कल होगा, कल कल इस तरह से वो आगे बढ़ती है। देखिए ये हमारे लिए पर्स की बात नहीं है, पेनु होना कृष्ण के मुख पर विराज होना ये हम लोगों के लिए संभव पर नहीं। अच्छा तब वृंदावन कहीं एक फूल भी बन जाए, फूल का ना भी वृंदावनम सखी वो वितनोति गुरु जब देव के सुत पदम पूज लब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणु अनुमृत मयूर नित्यम प्रेक्षा दिशान अवर्तान समस्त सत्वम। आह देखो तो आज ये वृंदावन भूमि पृथ्वी का मैं पृथ्वी में सबसे सुसु आज पृथ्वी को धन्य कर वृंदावनम सखी वो मिथुन आज पृथ्वी में सबसे इसी की वृंदावन की कृति और वृंदावन है इसलिए मथुरा की कृति, मथुरा इस विश्व में है इसलिए उसकी कृति विश्व की पृथ्वी की कृति। इसी तरह से आगे बढ़ते चले, यदि पृथ्वी में मथुरा नहीं रहता तो पृथ्वी की कोई भी ख्याति नहीं, प्रतिष्ठा नहीं, और मथुरा में वृंदावन यदि नहीं होता तो इसकी कोई भी प्रतिष्ठा नहीं। इस वृंदावन में ये बंशी बाटी इत्यादि नहीं, तो तब वृंदावन का क्या महत्व रह जाता है? जहां पर राशि नहीं हुआ उस वृंदावन वर्ग में 84 कोष के ब्रजमंडल में या 16 कोष वाली परिधि वृंदावन में यदि गोवर्धन गिरिराज नहीं होते तो वृंदावन का महत्व क्या है? और उसी गोवर्धन की तराई में यदि श्याम कुंड और राधा कुंड नहीं होते तो उसकी भी क्या महत्ता, इसलिए एक एक से अधिक यहाँ पर वृंदावन होगा। वृंदावनम सखी वो बितुने पृथ्वी लोक में वृंदावन के स्वभाव को तो क्यों हो रही है? जब देव की सुत पदाम पूजा लब्ध लक्ष्मी आज कृष्ण के चरण कमल मधुर मधुर जिसमें भजा वज्र अंकुश कमल इत्यादि स्फूट रूप से परिव्यक्त है। कृष्ण के जब चरण कमल पड़ते हैं 19 प्रकार के उनके चिन्ह हैं, साधक लोग उसका ध्यान करते हैं, उसी प्रकार से श्रीमती राधिका के चरण चिन्ह भी तो कृष्ण 19 हैं जिसमें और कोई प्रकट हो चाहे न हो किंतु कमल भज वज्र अंकुश त्रिभुज कलश ये जरूर प्रोमिनेंट रूप में ये रहते हैं। आज वृंदावन में कोई भी स्थल नहीं है जहां पर कि ये चीजें नहीं है, जहां देखो तहां तहां पर वज्र फल अंकुश कृष्ण के चरण छोटे छोटे मधुर मधुर ये चरण होने लगे, ये वृंदावन के अतिरिक्त कहां होगा? और उसमें कृष्ण को जो ही देखा मयूरों ने वो धन्य है मयूर इस वृंदावन में। प्रख्याति शानु गोवर्धन की जो आद्य है उनके शानु प्रदेश में, शानु माने क्या, जो समतल भूमि है नीचे वाली, थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा भी हुआ रहेगा, समतल भूमि जो है जहां के कदम्ब के वृक्ष, तमाल वृक्ष हैं, आम हैं, कदम्ब के हैं, चंद्र से फूल लगे, लताएं हैं जो वृक्षों के ऊपर में चढ़ रही, फूलों फलों से भरती है, उसमें मुक्ता लता भी होगी। उसमें जही कृष्ण ने प्रवेश किया गोचारण करते हुए, मयूरों ने देखा और कूकना आरंभ कर दिया, मेघ को जैसे देखते हैं, और आनंद में भर करके उनको देखा, पंख फैला दिए इस प्रकार से और नाचना आरंभ किया। समझा जाए मेघ हमारे जो बंधु होने जाए, मेघ से सुंदर बंशी की ध्वनि हुई, मैंने कृष्ण ने बजाई, मयूर लोग थिरकने लगे और उसके शब्दों पर नृत्य करने लगे, जैसे जैसे बंसी बजती है और बंसी के ध्वनि पर मयूर लोग थिरकने लगे, एकदम देखी सुध बुद्धि भूल। अब मयूर का नचना देखना था, कृष्ण को और हो गया उत्साह, अब उन्होंने पंचम से सप्तम, सप्तम से इस तरह से सुरीली रागों में तरह तरह के सुरों को भरना आरंभ किया, मयूर एकदम मदहोश होकर के नृत्य करने लगा, कभी कभी केका केका एक साथ में हजारों बोल उठते हैं। इधर में उनको देखा अवतारी समस्त सब, कोयल ने देखा, दो एक कोयल ने कहो कि किंतु आज वो एकदम चुप हो गई, नित्य ऐसा कभी देखा नहीं, कोयल नित्य नहीं करती, उनका नित्य देख करके और कृष्ण का बंसी वादन और उनका मुखारविंद दोनों देखा, इधर मयूर का नित्य करना देखा, एकदम वो भी एकदम तन मन विशुद्ध सब कुछ हो गए। देखा कबूतर है, कोयल है, सूक है, सारी है, ये सब एक साथ में चुपचाप बोली, बोलना भूल गए वो लोग, तो ये वृंदावन में समस्त मयूर जब नृत्य करने लगा और बंसी कृष्ण बजाने लगे, तो मयूर ने अपनी पंख झाड़ दी और एक सुंदर पंख उसमें से निकला, नीचे गिरा, कृष्ण ने समझा कि ये उपहार दे रहा है, ब्रज में ऐसा है ना, कोई नृत्य करता है गाता है तो ऐसे ऐश करके उसको दे दे। आज मयूर ने देखा बाबा धन्य धन्य, बस उसको दे दिया, साधु साधु कहते हुए अपना एक पंख, इतना सुंदर पंख उसमें सातों रंग भरे हुए हैं, ऐसा जगत में कोई दूसरा उदाहरण नहीं, अपने प्रिय चीज को उनको दे, कृष्ण ने उसको चक्र उठा लिया बजाते हुए और लेकर के शिवरा, तुम्हारा उपहार हमें मान्य है, उसको यहां कर दिया और फिर बंसी गोपियां करती हैं, ओहो मयूर को कर दिया, यदि मयूर संभव नहीं है तो हम सुप पक्षी कोयल इत्यादि को कर दिया, और इसी जगह उनका नित्य और कृष्ण का मुखारविंद तो अंतस्वच्छंद रूप से देख सकती, उनका बंसी वादन करना देख सकती, एकदम निकट में आकर के, उन लोगों के लिए कोई पैन नहीं है, कोई भी बाधा नहीं है, किंतु हम लोगों के लिए जितना बाधा जितनी बाधा है, सास ने सुन लिया है, ससुर ने सुन लिया है, या देख लिया है कहीं जा रही, कहां जा रही है, कित जा रही है, लठिया लेकर के कहां जा रही है, बेटे भी, इन गोपियों को तो बेटे नहीं है, दूसरों की देवरानी के या जेठानी के बेटे अब बड़े बड़े हो गए, कहां जा रही है, पति को यदि कोई तनिक भी भनक भी पड़ जाए तो हमारी बाधाएं कितनी है, अरे इन लोगों को कोई बाधा नहीं, यदि मरेंगे हम अमर करके हम ये पशु पक्षी होंगे, जो कृष्ण का रूप ध्यानंदनम उपात विचित्र वेशम अखंड वेणुरणितम सह कृष्ण सारा पूजा प्रणयाम ओ धृणिया ये धन्य कृष्ण सारविंद जिन्होंने कृष्ण को ही अपना सार बनाया है, कैसे लाल लाल उनके कुछ ईशद रोए हैं और बीच में कृष्ण की अद्भुत सुंदर लग रहे, मानो कृष्ण को ही अपने जीवन का सार बना लिया है। पीछे पीछे चल रहे, आगे आगे गिरनिया है, पति की तरफ नहीं देख रहे, निश्चिंत है पूर्ण रूप से और आगे आगे जा रहे। कृष्ण के यहाँ गई, कृष्ण का रूप देखा और बंसी बाद में देखा। धन्यास्म मूढ़ मतल, मूढ़ कर मूढ़ किस लिए, पशु है कृष्ण की सेवा में इनका क्या अधिकार, किंतु ये मूढ़ मन ये हिरणिया ही आज धन्य है, स्वच्छंद गति से कृष्ण को देख रहे हैं, उनका बंशी बाद में और प्रणय की भीख उनके एकदम मुख में मुख लगा दिया, मानो एकदम निकट से और प्रणय की भीख मान। पति कह रहा है कोई चिंता नहीं है, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे जगत के कह करके क्या करेंगे, मैं ही जब तुम्हारे अनुकूल हूं तो जगत के लोग कहते रहे, कहते हैं सास सासुर भी कहते हैं, जो कुछ भी जो कुछ कहना है हम, तुम जाओ निश्चिंत रूप से कृष्ण के पास, इसलिए अब हम मरेंगे तो क्या होंगे। तो धन्यास मूढ़ मतो अपहरण्य राजानंद नंदन उपात विचित्र वेशम, उपात मैंने देखकर कृष्ण के अत्यंत सुंदर मनोरम मुंह को देख करके और उनके मुख से जो बंसी में जो निर्गत बेणु गीत उसे बेणु की जो ध्वनि निकल रही है, जगत जगत को मोहन पागल बनाने वाली, उसको सुन करके हिरणियों ने अपना सर्वस्व कृष्ण के चरण में दे दिया और निकट से उनके दर्शन कर, ये हिरणिया धन्य मूढ़ होने पर हम भी मूढ़ बनेंगे और मूढ़ बन करके ही हम ऐसे ही होंगे, हिरणिया का जन्म तो हो जाने दो, हम ऐसी बात करेंगे जैसे हिरण होकर के जन्म लेकर के कृष्ण के सुंदर मुखारविंद को स्वच्छंद गति से देख रहे हैं। कोई हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष न हमको बाधा देने वाला, ऐसे हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष है जो बाधा देने वाला, तो उन लोगों के बाधा से रहित होकर के स्वच्छंद। अब तो हो गया कितना, 10:30, अब पुनः पुलिस वाला हम शाम को कर दें आज यहीं तक पतिता नाम पावन कैसे व्यक्त करनी, साधक लोगों को उसे सीखना चाहिए, इसीलिए वो लीला का अवतार हुआ, लीला ने अवतरण किया है, इसीलिए कृष्ण किस लिए लीला करते हैं, जिसके अंदर में थोड़ी सी भी भजन करने की लालसा हो उन्हीं लीलाओं को स्मरण करें, उन्हीं लीलाओं के अनुगत्य में अपना भजन बनाएंगे, वैसे ही भाव आए। वैसा तो नहीं होगा जैसे हम लोगों ने सोचा, कोई पढ़ रहा है अभी क्लास 12 में पढ़ रहा है, इंटर में पढ़ रहा है, मैं इंडियन सिविल सर्विस में जाऊंगा, उसके लिए अभी से तैयारी करता है, वो साथ माता पिता भी देते हैं और उसको भी एक उद्देश्य बना लेता है कि हमको देखें, कोई कुछ उद्देश्य कर लेता है। उसी तरह से भजन राज्य में एक उद्देश्य होना चाहिए, किस रूप में हम भजन करेंगे और हमारा उद्देश्य भजन का क्या है, कृष्ण की कैसी सेवा हम प्राप्त कर सकते हैं, श्रवण करते करते वो ठीक है। इसलिए शिक्षा और शिक्षा उद्देश्यों को
आप
बीच में कृष्ण है उनको देखा।